नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मोना पार्थ सारथी। मोना, आपका स्वागत है।
धन्यवाद, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा, सेमीफाइनल में भूटान को 5-0 से हराया। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के 9वें दिन आज फुटबॉल, तीरंदाजी और एथलेटिक्स के मुकाबले हुए। छत्तीसगढ़ की महिला फुटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 16वीं सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में आज आंध्र प्रदेश, मिजोरम और दिल्ली ने शानदार जीत दर्ज की। और आईपीएल T20 क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। भारत सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। कल माले में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने भूटान को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई।
प्रतियोगिता में शानदार लय में नजर आ रही भारतीय टीम के लिए फाइनल की राह काफी आसान साबित हुई। मैच के पहले हाफ में उमांग डोडुम और एमडी अरबाश के गोल ने टीम को मैदान में बढ़त दिलाने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक तौर पर भी मैच में भारत की पकड़ मजबूत कर दी, जिसका असर मैच के दूसरे हाफ में साफ नजर आया। और रोहिन चफामयुंग ने एक के बाद एक 56वें और 57वें मिनट में दो गोल दागते हुए भारत की राह को और आसान बना दिया। इसके बाद मालिम गंबा सिंह थोकचेम ने इंजरी टाइम में गोल करके टीम को 5-0 की शानदार जीत दिला दी। अब कल चैंपियनशिप के फाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। दोनों टीमें ग्रुप स्टेज में पहले भी एक दूसरे से भिड़ चुकी हैं, जिसमें मैच 1-1 से ड्रॉ रहा था। 4 खिताबों के साथ इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम भारत की नजर अपना 5वां खिताब जीतने पर होगी। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
मोना, क्या भारतीय टीम ने इस मैच से पहले सोचा होगा कि भूटान उसको फाइनल में गिफ्ट देने जा रहा है?
देखिए, बिल्कुल, अगर आप पूरे टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन देखें तो एक बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच हुआ है ग्रुप चरण में, जो 1-1 से ड्रॉ रहा था, उसके अलावा कोई कड़ी चुनौती भारत को एसएच मिलती नजर नहीं आई है। और ये मैच जो सेमीफाइनल मैच था, यहाँ थोड़ी सी उम्मीद थी कि बांग्लादेश ग्रुप चरण के प्रदर्शन को भुलाकर थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करेगा, लेकिन चौथे मिनट में ही जब भारत ने खाता खोला, उसके बाद से जिस तरह सेकंड हाफ में भी लगातार गोल हुए, पहले हाफ में भी, तो कहीं भी एक भी स्कोप नहीं छोड़ा था भूटान के लिए। तो यहाँ मुझे लगता है कि भारतीय टीम को भी श्रेय देना होगा। और चूंकि टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है इस दक्षिण एशिया टूर्नामेंट की, तो 4 बार खिताब जीत चुकी है, तो इस बार भी मुझे लगता है कि भारत की अभी तक की राह जितनी आसान रही है, बांग्लादेश के खिलाफ भी अगर इस लय को कायम रखते हैं तो खिताब जीतने से, 5वां खिताब जीतने से कोई रोक नहीं सकता भारत को।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर बांग्लादेश के खिलाफ भारत इसी लय को बरकरार रखता है तो 5वां खिताब बहुत ही नजदीक टीम के लिए नजर आता हुआ। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के 9वें दिन आज फुटबॉल, तीरंदाजी और एथलेटिक्स के मुकाबले खेले गए। छत्तीसगढ़ की महिला फुटबॉल टीम ने आज रायपुर में हुए फाइनल मैच में झारखंड को 0 के मुकाबले 1 गोल से हराकर स्वर्ण पदक कब्जाया। विजयी गोल टीम की कप्तान किरण पिस्दा ने किया।
जगदलपुर में एथलेटिक्स के मुकाबलों में महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण कर्नाटक की रितुश्री ने और 1500 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण कर्नाटक की ही नगिनी ने जीता। पुरुषों की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा का स्वर्ण उड़ीसा और महिलाओं की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा का स्वर्ण झारखंड की टीम ने जीता। वहीं नागालैंड के वेदे ने पुरुषों की 10,000 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक और पश्चिम बंगाल की संजीता ओराव ने महिलाओं की 10,000 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इस बीच अंबिका में मलखंब की स्पर्धा भी शुरू हो गई है। मलखंब को डेमो खेल के रूप में शामिल किया गया है। कर्नाटक पदक तालिका में पहले स्थान, ओडिशा दूसरे और झारखंड तीसरे स्थान पर है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
जब इस प्रतियोगिता की शुरुआत के 2 या 3 दिन थे तो ऐसा लगता था कि कर्नाटक एक तरफा मुकाबला चला रही है, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह और इवेंट्स खुले और मैच शुरू हुए, अब धीरे धीरे ओडिशा हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, टक्कर दे रहे हैं और थोड़ी सी इक्वालिटी अब नजर आ रही है मेडल्स टैली में। तो कह सकते हैं कि अब थोड़ा सा जब तैराकी का दबदबा कम हुआ है तो कर्नाटक के लिए मुकाबला मुश्किल हुआ।
बिल्कुल, अब आप देखिए फुटबॉल और एथलेटिक्स की स्पर्धाएं जब शुरू हुई और ये ट्राइबल गेम्स है और हम सब जानते हैं कि ओडिशा और झारखंड खासतौर पे हॉकी की नर्सरी रहा है जहां ट्राइबल बेल्ट से काफी खिलाड़ी आते हैं और फुटबॉल भी वहां काफी लोकप्रिय है, तो इन खेलों के जरिए वहां के इन खिलाड़ियों को, एथलीट्स को या फुटबॉल खिलाड़ियों को एक ऐसा मंच मिला है। आप कितने सारे नए नाम जब से ये खेल शुरू हुए हैं ट्राइबल गेम्स, कितने सारे नए नाम और नए खिलाड़ी सामने आए हैं और बेहद ही विषम स्थितियों से जूझते हुए वो इस मंच तक पहुंचे हैं। कोई स्वर्ण पदक जीत रहा है, कोई टीम इवेंट जीत रहा है, तो बहुत ही एक मुझे लगता है कि अच्छा मंच है खिलाड़ियों के लिए भी और किसी भी एक प्रदेश की मोनोटोनी नजर नहीं आती। कर्नाटक तैराकी में वैसे भी दूसरे प्रदेशों से आगे है, तैराकी का मेन हब कर्नाटक को माना जाता है, तो वहां पर अपेक्षा के अनुरूप ट्राइबल खेलों में भी कर्नाटक का दबदबा रहा। लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि दूसरे खेल जब शुरू होने लगे तो धीरे धीरे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेजबान छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन भी बहुत ही अच्छा रहा है। और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट मुझे इन खेलों का लगता है कि जगदलपुर, अंबिकापुर, रायपुर आज तक कभी खेलों के लिए नहीं जाने जाते थे, नक्सलवाद था, पिछड़ा माना जाता था, और इन खेलों के जरिए वहां से जो लोकल प्रतिभाएं भी सामने आ रही है काफी काबिले तारीफ है।
जी बिल्कुल, तो मोना कहा जा सकता है कि ये जो खेलो इंडिया का पूरा अमरेला है, इसके अंतर्गत सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, देश को नए मैदान और नए वेन्यूज भी मिलते हैं,
नया इंफ्रास्ट्रक्चर। आप ये मत भूलिए कि जहां पे भी खेल होते हैं बुनियादी ढांचा पूरा, अगर एथलेटिक्स हो रहे हैं तो उसका टफ वहां पे लगा है, हॉकी है तो एस्ट्रो टफ बिछाया गया है, तो पूरा एक जो बुनियादी ढांचा तैयार होता है किसी भी खेल के दौरान वो बाद में वहीं के खिलाड़ियों के काम आएगा और कई सारी प्रतिभाएं वहां से सामने निकलेगी। तो ये बहुत ही एक अच्छा और अच्छी शुरुआत है इनॉग्रल गेम्स है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहां से काफी सारे अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे।
और अब रुक करते हैं हॉकी का, जहां आंध्र प्रदेश, मिजोरम और दिल्ली ने आज राजगीर हॉकी स्टेडियम में 16वीं सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के दूसरे दिन शानदार जीत दर्ज की। दिन के पहले मैच में डिवीजन सी के पूल ए में आंध्र प्रदेश ने पुदुचेरी के खिलाफ 3-1 से जीत दर्ज की। इसी डिवीजन में मिजोरम ने असम को 6-0 से हराया। डिवीजन बी के पूल ए में दिल्ली ने एक तरफा मुकाबले में बंगाल पर 9-1 से जीत दर्ज की। वहीं पूल में तेलंगाना ने गुजरात को 20-0 से करारी शिकस्त दी, जिसमें से अमित दयाल ने अकेले 10 गोल किए। वहीं डिवीजन बी के पूल बी में कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश के बीच मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसी पूल में दिन के आखिरी मैच में छत्तीसगढ़ ने हिमाचल को 7-2 से हराया। तो हॉकी चैंपियनशिप आगे बढ़ रही है। चैंपियनशिप की सबसे खास बात, इसका जो डिवीजन किया गया अलग अलग पूल के आधार पे, समान श्रेणी की टीमों को साथ मौका दिया गया है, कितना सार्थक है ये।
तीन पूल जो है ए बी सी, तो ए में जो है वो टॉप टीम्स जो है वो खिताब के लिए खेलेंगी और बी और सी में दूसरे जो बराबरी की दूसरी टीमें होंगी। और यहाँ पर रेलिगेशन और प्रमोशन का भी इसमें पिछले साल से शुरू जो किया है कि अगर ए में जो नीचे स्थान पर रहती है वो बी में रेलिगेट हो जाएगी और बी में जो अच्छा प्रदर्शन करती है उसको ए में प्रमोट किया जाएगा। तो मुझे लगता है बहुत ही एक अच्छा फॉर्मेट है और बहुत बड़ा मोटिवेशन है खिलाड़ियों के लिए भी। और हॉकी की अगर हम बात करें तो सब जूनियर टूर्नामेंट है ये जो होते हैं, बेसिकली भारत का जो टैलेंट पूल है उसको और बड़ा करने के लिए, जो राष्ट्रीय टीम सीनियर टीम के लिए यहां से हो सकता है खिलाड़ी निकले। और इस तरह की चैंपियनशिप हो रही है जिसमें जितनी भी टीम, जितने मैच आज हुए, ये पारंपरिक रूप से ये टीमें जो है वो हॉकी का गढ़, हॉकी इनका मजबूत नहीं माना जाता है और इनके यहां से अच्छे खिलाड़ी 10-10 गोल करने वाले खिलाड़ी निकल रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा भारतीय हॉकी के लिए संकेत है।
जी बिल्कुल, एक अच्छा संकेत, और जैसा कि आपने कहा कि सीनियर टीम के लिए एक मजबूत बेंच स्ट्रेंथ देने में ये कदम काफी सार्थक साबित होंगे। मंगोलिया के उलान बटोर में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के चौथे दिन आज भारत के आदित्य प्रताप यादव ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में आदित्य ने पूरे मुकाबले में नियंत्रण और सटीकता का प्रदर्शन करते हुए सऊदी अरब के मूसा अल हौसा पर 5-0 के सर्वसम्मत निर्णय से जीत हासिल की। तो अब क्वार्टर फाइनल के मुकाबले कल से शुरू होंगे, आदित्य पे तो नजरें होंगी लेकिन निकहत भी कल अपना मुकाबला खेलेंगी और प्रीति पवार हैं, प्रिया हैं, दीपक हैं, तो इन पे नजरें होने वाली हैं।
कुल मिलाकर अब तक भारतीयों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, निराश नहीं किया है। और आदित्य की हम बात करें तो नेशनल चैंपियन भी है वो और इस साल की शुरुआत में भी एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत चुके हैं, तो हौसले काफी बड़े हुए हैं। और निखत जरीन पर बिल्कुल सभी की नजरें होंगी क्योंकि पेरिस ओलंपिक की निराशा वो बार बार उनकी बातों में कहीं ना कहीं आती है और वो एक तरीके से खुद को फिर से साबित करने के लिए नजरें उनकी लॉस एंजलिस पर लगी हैं, तो ये टूर्नामेंट्स के जरिए ही धीरे धीरे कदम दर कदम जो उसको कहते ना सही समय पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना उस दिशा में जाना चाहेंगी।
जी बिल्कुल, इन खिलाड़ियों को उम्मीदें होंगी कि यहाँ से एक अच्छा हौसला लेकर के वापस भारत लौटें और जिसको अपनी तैयारियों के रूप में लॉस एंजलिस में अंजाम दिया जाए। IPL T20 क्रिकेट में आज कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 13वें ओवर में 4 विकेट पर 148 रन बना लिए थे। इससे पहले कल खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2026 में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। जानते हैं कल खेले गए मुकाबले का हाल।
लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में IPL के 5वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स पर 6 विकेट से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी LSG की टीम 19वें ओवर में 141 रन पर सिमट गई। टीम के बल्लेबाजों ने खासा निराश किया और 6 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। मिचेल मार्श के 35 और अब्दुल समद के 36 रनों की बदौलत लखनऊ ने सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। विपक्षी खेमे से लुंगी एनगिड़ी और टी नटराजन ने 3-3 विकेट किए। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत भी बेहद खराब रही और टीम ने 26 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए, पर इसके बाद समीर रिजवी ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 76 गेंदों में 119 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 17 गेंदें शेष रहते जीत दिला दी। रिजवी 47 गेंदों पर 70 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि स्टब्स ने 39 रन की नाबाद पारी खेली। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
जहाँ पे पिछले वर्ष का IPL खत्म हुआ था, हम बात कर रहे थे कि एक मैच आएगा जहाँ पे 300 रन भी स्कोर बोर्ड पे देखने को मिलेंगे। इस बार अंकुश लगा है स्कोर बोर्ड पे काफी हद तक, टीमों की आउट ऑफ फॉर्म कहा जाए या फिर शायद अभी गति प्राप्त करने में समय लगेगा।
देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी तक उस तरीके का धमाकेदार बल्लेबाजी प्रदर्शन जिसके लिए IPL जाना जाता है वो देखने को नहीं मिला है। हम कल के ही मैच की बात करें तो काफी उम्मीदें थी ऋषभ पंत से भी कि पिछले सत्र की नाकामी को भुलाकर वो इस बार, उनको फुल फ्लेजेड टीम भी मिली है। पिछली बार फिटनेस प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन फिर यहां भी कोई अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। उनका बल्ला लगभग खामोश ही रहा। एडन माक्रम नहीं चले जो SA20 में इतना अच्छा प्रदर्शन करके अभी आए थे, वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया था। और दिल्ली का भी हालत खराब ही थी, मतलब 4 विकेट 30 रन के आसपास ही उनके गिर गए थे। वो तो समीर रिजवी जो है, और बहुत ही यहाँ टीम प्रबंधन की तारीफ करनी होगी कि समीर रिजवी चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, चाहे वो यूपी में या यूपी T20 में, और उनको उसी क्रम पर उतार कर उनको कॉन्फिडेंस दिया गया कि तुम अपना स्वाभाविक खेल खेलो। बाद में मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी कि टीम बंदर ने जो भरोसा दिया उससे उनको काफी आत्मविश्वास मिला और इतना धमाकेदार प्रदर्शन। और यही IPL की खूबसूरती भी है कि एक अननोन सा मैच विनर आपको हर मैच में मिल जाता है।
जी बिल्कुल, एक मैच विनर मिल जाता है और एक ऐसा ही मैच विनर मिला था आज से 15 साल पहले। और अब समय आ गया है कार्यक्रम में तारीखों के पन्नों को पलटने का और चलने का। आज ही से ठीक 15 साल पहले 2 अप्रैल 2011 की उस यादगार तारीख को वापस याद करने का जिसने 28 साल के इंतजार को खत्म कर इस तारीख को भारतीय क्रिकेटिंग इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर दिया और भुला दिया 2003 की कसक को, 2007 की नाकामी को और मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में लिख दी विश्व चैंपियन भारत की विनिंग स्क्रिप्ट। आज ही के दिन MS धोनी की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने 2011 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर अपना दूसरा एक दिवसीय विश्व कप खिताब जीता था।
Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. And it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final.
Well, there's the man, Sachin Tendulkar. He's been carried by his team. He's loved by his team. He's loved by his country. He's loved by the cricketing world. What an icon of the game.
MS Dhoni will collect the World Cup trophy. The party begins in Mumbai.
And the party begins. पिछले 2 या 3 सालों में भारत ने इतनी ICC ट्रॉफी देखी, लेकिन एक वो वक्त था, क्या महत्व रखती थी ये ट्रॉफी?
बहुत महत्व रखती थी पूरे देश के लिए। एंड द पार्टी बिगिंस इन मुंबई नहीं, वो पूरे देश में और जहां जहां भारतीय बसे हैं हर जगह दिवाली मनाई गई थी। अभी तक कुछ चीजें जो दिमाग में एकदम चस्पा है वो महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर छक्का, रवि शास्त्री की कॉमेंट्री, विराट कोहली का ये कहना कि सचिन ने इतने साल अपेक्षाओं का बोझ उठाया आज हम उनको कंधे पे उठा रहे हैं, गौतम गंभीर के 97 रन की पारी, युवराज सिंह कैंसर से जूझते हुए जो प्रदर्शन किया, तो हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के लिए वो कभी न भूलने वाली यादें हैं।
इन्हीं यादों के साथ अपने श्रोताओं को छोड़ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए, और हम सबको अनुमति दीजिए, नमस्कार।